उसने नफरत भरी नजर से फैजान की तरफ देखा। ये जो आपका पपेट है ना, जो आपके इशारों पर नाचता है। उसके शब्दों में इतनी नफरत थी कि माहौल और भारी हो गया। तभी अचानक घर की मेट घबराई हुई भागती हुई आई। अरमान भाई, वो हांफते हुए बोली। अरमान भाई बेहोश हो गए हैं, उनकी मुंह से झाग निकल रही है। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। जुबैदा बेगम, फैजान और माहिरा तीनों घबराकर तुरंत अरमान के कमरे की तरफ दौड़ पड़े। असल में हुआ ये था कि अरमान ने वही कपकेक्स खा लिए थे जो नूर ने बनाए थे। खा लेने की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। अस्पताल में अब लगभग पूरी फैमिली इकट्ठा हो चुकी थी। रेहान भी आ गया था और फरीद खान भी ऑफिस से सीधे अस्पताल पहुंच गए थे। सादिया एक तरफ चुपचाप बैठी हुई थी। डॉक्टर अरमान का पेट साफ कर चुके थे। अब वो खतरे से बाहर था, लेकिन दवाइयों के असर से बेहोश होकर सो रहा था। रेहाना बेगम घबराई हुई बोली, उसने ऐसा क्या खा लिया था कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई? माहिरा ने तुरंत कहा, ये तो आपको ही पता होना चाहिए। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। वो आगे बोली, क्योंकि कपकेक्स तो वो आपके ही घर से खाकर आया था। सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त वो आपके घर गया था और वहीं से कुछ खाकर आया था। ये सुनकर रेहाना बेगम सचमुच घबरा गईं। असल में अरमान ने जानबूझकर नूर के बनाए हुए कपकेक्स खा लिए थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो नूर को अपने प्यार का यकीन दिला सके। इस बात का क्या मतलब है? रेहाना बेगम ने हैरानी से पूछा। माहिरा ने ताना मारते हुए कहा, मतलब साफ है, वो आपके घर से नाश्ता करके आया था और उसके बाद ही बीमार हो गया। रेहाना बेगम का चेहरा पीला पड़ गया। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरा भाई अरमान को मार सकता था, माहिरा गुस्से में बोली। उधर यूनिवर्सिटी में नूर इंतजार कर रही थी। उसे लेने के लिए हमेशा की तरह फैजान आने वाला था, लेकिन आज उसकी जगह ड्राइवर आया। नूर ने हैरानी से पूछा, फैजान कहाँ है? वो मुझे लेने आने वाले थे, ड्राइवर ने कहा। फैजान साहब अस्पताल में है। ये सुनते ही नूर घबरा गई। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और सीधे हवेली पहुंच गई। वहां लॉन में सिर्फ घर के मुलाजिम थे। नूर ने घबरा कर पूछा, फैजान को क्या हुआ? उन्हें अस्पताल क्यों ले जाया गया? एक मुलाजिम ने कहा, फैजान साहब को नहीं, अरमान साहब को अस्पताल में दाखिल किया गया है। उन्होंने कुछ जहरीला खा लिया था। ये सुनते ही नूर का दिल जैसे रुक गया। उसे तुरंत याद आया, गुस्से में उसने अरमान से कहा था, मेरे बनाए कपकेक्स खाकर मर जाओ। और अरमान सच में वही कपकेक्स खा गया था। ये सोचकर नूर की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी कही हुई बातों पर बेहद अफसोस होने लगा। अभी तक घर का कोई भी सदस्य वापस नहीं आया था। सब लोग अस्पताल में ही अरमान के पास थे। फरीद खान भी वहीं थे। अरमान के डैड तो पहले ही शहर से बाहर थे, जहां वो अपना बिजनेस संभालते थे। घर अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। नूर अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें रो रोकर लाल हो चुकी थीं। वो बार बार अपनी कही हुई बातों को याद कर रही थी और हर बार उसका दिल और भारी हो जाता था। मेरे बनाए कपकेक्स खाकर मर जाओ, गुस्से में कही हुई वही बात अब उसके कानों में गूंज रही थी। नूर को बेहद अफसोस हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद अरमान ने सच में उसके प्यार में वो कपकेक्स खा लिए, शायद उसे यकीन दिलाने के लिए कि वो उससे कितना प्यार करता है। धीरे धीरे नूर का दिल भी उसी झूठे एहसास की तरफ झुकने लगा था। मगर नूर ये नहीं जानती थी कि असल में जहर अरमान ने नहीं खाया था, जहर तो उसकी जिंदगी ने पी लिया था। अरमान का प्यार उसे आने वाले वक्त में किस कदर भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा अभी नूर को बिल्कुल भी नहीं था। नूर लॉन में बैठी रो रही थी। रात की खामोशी में उसके सिसकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी गाड़ी आकर रुकी। सादिया गाड़ी से उतरी। नूर तुरंत उठकर उसके पास चली गई। भाभी, क्या हुआ? अरमान कैसा है? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। सादिया ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और ताने भरे लहजे में बोली, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नूर एक पल के लिए चुप रह गई। सादिया फिर बोली, मर जाए या जी जाए, तुम्हें क्या? बेचारा वो है जो तुम्हारे प्यार में जहर तक खा गया, और तुम हो कि उसकी कदर ही नहीं करती, बस उससे लड़ती रहती हो। उसकी बात सुनकर नूर की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। सादिया ने जानबूझकर और जहर खोला। मुझे तो लगता है उसे मर ही जाना चाहिए, नूर घबरा कर बोली। भाभी, ऐसा मत कहिए, सादिया ने नकली हमदर्दी दिखाते हुए कहा। वो बेचारा तुम्हारे प्यार में मरने तक पहुंच गया और तुम्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं है, नूर ने रोते हुए पूछा। भाभी, अभी तक उसे अस्पताल से छुट्टी क्यों नहीं मिली? क्या वो अभी भी खतरे में है? सादिया ने धीरे से कहा। डॉक्टर ने छुट्टी इसलिए नहीं दी, उन्होंने कहा है कि उसे अभी निगरानी में रखा जाएगा। वो जानबूझकर नूर के दिल में डर और अपराध बोध भर रही थी। देखा, तुम्हारे प्यार में वो कहां तक पहुंच गया, सादिया ने फिर कहा। भाभी, ऐसा मत कहिए, लेकिन सादिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसकी चाल धीरे धीरे काम कर रही थी। देर रात को अरमान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और उसे घर भेज दिया गया था। कमरे में जुबैदा बेगम, माहिरा और कुछ घरवाले मौजूद थे। अरमान बिस्तर पर लेटा हुआ था, अभी भी थोड़ा कमजोर लग रहा था। जुबैदा बेगम ने गुस्से से माहिरा की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम बताओ,
तुमने ताई अम्मी से क्या कह दिया था? तुमने ये क्यों कहा कि अरमान उनके घर से कुछ खाकर आया था, इसीलिए बीमार हुआ? अरमान ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, किसने कहा कि मैं उनके घर से कुछ खाकर आया था इसीलिए बीमार हुआ? सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। वो धीरे से बोला, मैं उनके घर जरूर गया था, लेकिन उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ चला गया था। वहां हमने कुछ स्नैक्स खाए थे। जुबैदा बेगम का गुस्सा माहिरा पर टूट पड़ा। देखा, तुमने बेकार में ताई अम्मी को कितना कुछ सुना दिया, अब जाकर उनसे माफी मांगो। माहिरा तुरंत बोली, मैं माफी नहीं मांगने वाली। उसके चेहरे पर अभी भी जिद साफ दिखाई दे रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी मैंने जो कहा गलत नहीं कहा, उसने रूखे लहजे में कहा। उसी वक्त अरमान ने अपना सिर पकड़ लिया। वो सच में थोड़ा परेशान था, लेकिन उससे ज्यादा वो इस बहस से तंग आ चुका था। वो चाहता था कि दोनों अभी उसके कमरे से चली जाएं, ताकि वो आराम कर सके। और सबसे बड़ी बात, वो नहीं चाहता था कि किसी को ये पता चले कि उसने जानबूझकर नूर के बनाए हुए कपकेक्स खाए थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो बीमार हो जाए और नूर को अपने प्यार का यकीन दिला सके। उनके जाने के बाद अरमान हल्का सा मुस्कुराया। उसे पूरा यकीन था कि कपकेक्स खाकर बीमार पड़ने के बाद नूर अब उससे इतनी दूर नहीं भागेगी। उसे लग रहा था कि अब नूर धीरे धीरे उसके प्यार को स्वीकार कर ही लेगी। उधर दूसरी तरफ रेहाना बेगम भी बहुत परेशान थी। माहिरा ने उन पर इल्जाम लगाया था कि अरमान उनके घर से कुछ खाकर बीमार हुआ है। फरीद खान उन्हें समझा रहे थे, कोई बात नहीं, ऐसे इल्जाम तो लगते रहते हैं, आप परेशान मत होइए। लेकिन रेहाना बेगम का दिल फिर भी भारी था। उधर नूर की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। बार बार उसके दिमाग में अरमान का चेहरा आ रहा था। उसे याद आ रहा था पहली बार उनसे मुलाकात कैसे हुई थी, फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई, दोस्ती हुई, और उनके बीच कितनी सारी बातें हुई। हर याद के साथ उसका दिल और बेचैन हो रहा था। सुबह होते होते नूर को पता चल गया कि अरमान घर वापस आ चुका है। उसने तुरंत उसे फोन किया, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन हर बार अरमान उसका फोन काट देता। नूर बार बार कॉल कर रही थी और अरमान जानबूझकर फोन नहीं उठा रहा था। कुछ देर बाद आखिरकार अरमान ने कॉल उठा ली। सॉरी, नूर ने बिना कुछ सोचे सीधे कहा। अरमान हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, कब से सॉरी करने लगी तुम? नूर ने धीमी आवाज में कहा। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि मेरे बनाए कपकेक्स खाकर मर जाओ, और आपको भी वो खाने नहीं चाहिए थे। अरमान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला,
अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने खा लिए। फोन की दूसरी तरफ नूर बिल्कुल चुप हो गई थी। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई थी।